उसे कब से जानते हो?
उस वक्त से जब हम साइकिल से पूरे ईरान का चक्कर लगाना चाह रहे थे, तभी से उससे जान पहचान हुई। वो ईरान के टूरिज्म सेंटर में काम करती है।
तो अब तक तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया?
क्योंकि हमारा इतनी जल्दी शादी का इरादा नहीं था।
देखो अच्छे लड़के, एक है कि आज रात महताब के लिए रिश्ता आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आज रात ही उसके घर वाले हाँ भी
मतलब
कर दें।
तुम ये कह रही हो कि मैं उससे कहूँ कि रिश्ता लाने वालों को उस वक्त तक टालती रहे जब तक मैं हाँ ना कह दूँ?
हाँ मिस्टर जल्दबाज, हाँ।
फिर तुम अब्बा से बात करोगी?
ऐसा तुम सोचना भी नहीं, मैं जब तक उस लड़की को देखकर पसंद नहीं कर लेती अब्बा से कुछ भी नहीं कहूंगी।
अच्छा, अगर अब्बा को पता चला तो वो क्या करेंगे?
या चीखेंगे या चिल्लाएंगे या बैठकर तुम्हें समझाएंगे या फिर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। बस खुदा करे कि वो खामोश ना हो जाएं।
तो यहां मैं काम करता हूं। नौजवानी में ऐसी जगह का मालिक होने का ख्वाब देखता था, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं थे। अब जब के हैं तो जवानी जा चुकी है। शायद उसकी वजह यह है कि मैंने 30 बरस ऐसी चीज के लिए गंवा दिए हैं जिससे आज मुझे नफरत है।
कामरान से कितने बरसों से अलहदगी है? माफ कीजिएगा, बेवकूफी वाला सवाल था ना।
तुम बहुत जल्दी अपने वादे भूल जाते हो रामीन।
वैसे आप भी कुछ ज्यादा ही हसास हैं।
बहरहाल ख्याल रखना अपनी एक एक हरकत और एक एक बात का।
जनाब, मेरे साथ भी खेलेंगे?
आज मूड नहीं है, तुम्हारे जैसों को बर्दाश्त करने का हौसला भी नहीं।
उसके शाने इतने चौड़े थे, कहने लगा ताकत देखनी है तो मारो। मैंने सोचा अगर मारूंगा तो बाद में बुरी तरह फंस जाऊंगा। मैंने देखा बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, फिर भी वो कहने लगा अरे भाई मारो। मैंने कहा भाई इन शानों को चूमना चाहिए, मारना नहीं। मैंने उसके शानों को चूम लिया, उसके बाद वो मेरा मुरीद बन गया। अगर बोलूं मर जाओ फौरन मरने को तैयार। अरे सलाम जनाब बहरोज, माफ कीजिएगा आपके आने का पता नहीं चला।
ठीक है ठीक है ठीक है।
दोस्तों तुम लोग जाओ, जाओ अपनी टेबल पर जाओ।
रामीन मोइज़ी, ये मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का बेटा है। ये बरसों से ईरान से बाहर रहा है, लेकिन ये अभी बिल्कुल परदेसी जैसा है। तुम्हें इसके लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए। मतलब जब तक ये ईरान में है खुश रखने की इसको कोशिश कर।
जी जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें।
तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं? देखो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब।
खुदा हाफिज।
खुशामदीद रामीन साहब, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? देखिए हमारे यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। क्या सचमुच कुछ नहीं चाहिए आपको?
शुक्रिया, तुम्हारी तारीफ मैं पहले ही सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो मैं देख रहा हूँ मुतमईन हूँ कि किसी ने नहीं देखा होगा।
क्या आप फाल निकालते हैं?
शायद।
अच्छा तो क्या देख रहे हैं?
तुम्हारा मुस्तकबिल।
ऐश होंगे या भुखमरी होने वाली है?
तुम्हें तरक्की का एक मौका मिलेगा, अगर इससे फायदा नहीं उठाया तो पूरी उम्र यहीं बैठे दूसरों के किस्से सुनाते रहोगे और अफसोस करते रहोगे। उस तकलीफ के लिए जो मरजान साहिबा यानी मेरे लिए उठाई है उसका बहुत बहुत।
ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? हमने ये काम पैसों के लिए थोड़े ही किया है। बुरी बात है, इसे रख लीजिए जेब में।
मुझे तकल्लुफात पसंद नहीं है। अब जो भी काम मेरे लिए करोगे उसका पैसा लोगे।
हाँ ये हुई ना बात। हम तो आपके खादिम हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे।
तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आरश।
आपकी जर्रा नवाजी है जनाब।
मेरी बात गौर से सुनो, अगर आतिफा वहां आए तो इतना ख्याल रहे कि अपने वालिद के बारे में उसे कुछ मत बताना।
और अगर पूछ लिया तो क्या कहूंगी?
बहुत आसान है, कुछ पट्टी पढ़ा देना।
मैं झूठ नहीं बोल सकती उम्मीद।
ठीक है झूठ मत बोलो।
बस कुछ बताओ मत, उसकी बात का जवाब ही ना दो, ये ज्यादा ठीक रहेगा।
देखो जब मैं उन लोगों को राजी कर लूंगा
तो फिर मैं धीरे धीरे खुद ही सब ठीक कर दूंगा। ठीक है?
ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो।
उससे कहो अभी वो बहुत बच्चा है।
लेकिन मामला बहुत संजीदा है अब्बा।
उम्मीद में अगर संजीदगी होती तो वो तुम्हारे बजाय मुझसे आकर बात करता, समझी?
शायद उसे शर्म आ रही हो।
नहीं ये बात नहीं है, उसे खुद मालूम है कि उसकी शादी में अभी बहुत वक्त है, अभी उसे बहुत कुछ साबित करना है। ये काम हर एक के बस की बात नहीं बेटी।
अब्बा आप उसे डांटने के बजाय उससे बात क्यों नहीं करते?
कोई जरूरत नहीं, समझूंगा तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। उम्मीद को अभी बहुत कुछ सीखना है, उसे जिंदगी का इल्म हुए बगैर शादी ब्याह के बारे में सोचना नहीं चाहिए।
खुद सुन लिया ना अब्बा ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं?
वालेकुम सलाम। अरे वालेकुम सलाम, आप बिल्कुल सही जगह आई। मैं महताब गुदरसी।
आपसे मिलकर खुशी हो रही है।
शुक्रिया, तशरीफ रखें, आइए।
आपने तो मुझे खूब पहचाना।
आपकी फोटो देखी थी।
मेरी फोटो?
तू चाल स्टेशन, आप थी, आपके वालिद और उम्मीद साहब।
अच्छा तो उम्मीद ने एक तरह से पहले हमारा तारुफ करा दिया है।
चाय पीना पसंद करेंगी? मंगवाऊं?
जी शुक्रिया।
जनाब सुलेमान मेहरबानी करके एक चाय लाएं। जी हाँ मेहमान है। शुक्रिया।
आप कितने दिनों से यहाँ काम करती हैं?
तकरीबन एक साल हो रहा है, टर्म के आखिर में ही यहाँ नौकरी मिल गई थी।
ऐसा नसीब कम लोगों का होता है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने 23 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल कर ली और फिर पसंद की जॉब भी मिल गई।
अगर तहकीक के लिए आई हैं तो जान लें कि मेरी उम्र 24 बरस है। अपनी नौकरी से राजी हूँ, बस सैलरी थोड़ी कम है।
हमारे उम्मीद साहब को कितना जानती हैं?
थोड़ा बहुत।
आप जानती होंगे कि उम्मीद यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसका जुनून साइकिल रेस है। ठीक ठाक आमदनी का जरिया नहीं है। अब्बा के जबरदस्ती करने पर एक दो घंटे प्रेस चला जाता है और मौका मिलते ही गायब हो जाता है।
जी हाँ, जानती हूँ।
अच्छा, तो फिर ऐसे लड़के से शादी करने पर तुम कैसे तैयार हो सकती हो? मैं संजीदगी से बोल रही हूँ।
शायद उम्मीद के पास कुछ चीजें ना हो, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां हैं जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं।
जैसे?
वो दिल का बहुत अच्छा और साफ है। उसकी जिंदगी में बहुत लंबे ख्वाब हैं। जैसे वो साइकिल से पूरी दुनिया के चक्कर लगाना चाहता है।
तुम्हारे ख्याल में इज़्दवाजी जिंदगी के लिए ये सब चीजें काफी होती हैं?
क्या हुआ, मिली उससे, बात की कुछ?
तुम किससे पूछकर घर वालों के फोटो दूसरों को दिखाते फिरते हो?
दूसरों को क्या मतलब हुआ भाई, घर वालों की फोटो दिखा दी ताकि घर वालों को पहचान सके।
बहरहाल ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
ठीक है, अब बताओ वो कैसी लगी, पसंद आई तुम्हें? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी लड़की है।
उसके घर वालों से मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे लोग हैं।
अच्छा, तो फिर तुम कब मिलने वाली हो उससे?
देखो, जब तुम अब्बा को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाओगे कि तुम बड़े हो गए हो, तो बाकी काम मैं कर दूंगी। फिलहाल खुदा हाफिज।
माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे एक टैक्सी चाहिए थी लवासान रोड के लिए। बराए मेहरबानी आप मेरा पता नोट फरमा लीजिए। नादिर लेन, हाउस नंबर 80। जी बिल्कुल, रेडियोलॉजी के बगल में ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक गुजारिश है कि अगर रहीमी साहब हों तो बराहे करम उनको ही भेजिएगा। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। गुड नाइट, खुदा हाफिज।
आगे ही बैठ जाते।
शुक्रिया, पीछे ही ठीक हूं।
माफ कीजिएगा, टैबलेट बिना पानी के मत खाइएगा, गले में फंस सकती है, खतरनाक है।
घर पहुंचकर पानी भी पी लूंगा।
माफ कीजिएगा, मैं पूछ सकता हूँ आप क्या कर रहे हैं?
इंसुलिन है। इस मोजी बीमारी की वजह से हर रोज एक इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है।
लेकिन यहाँ गाड़ी में?
घर तक का इंतजार नहीं कर सकता।
वैसे आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आपको इस तरह की बीमारी हो।
किस्मत में यही है जनाब, क्या कर सकते हैं। कुछ लोग 100 साल जीते हैं, एक बार भी डॉक्टर की जरूरत महसूस नहीं होती, और कुछ लोग हमारी तरह दुनिया में कदम रखते ही अस्पताल का रुख कर लेते हैं और 30 बरस भी पार नहीं कर पाते।
खुदा आपको लंबी उम्र देगा इंशाल्लाह।
लंबी उम्र का भी कोई फायदा नहीं है जनाब, बस आदमी की मौत ऐसे टाइम पर आनी चाहिए जब उसकी मौत लिखी हो। चाहे आदमी बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार या फिर सेहतमंद, फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि जब से दुनिया में आया हो और जब जा रहा हो तो उसके दौरान अच्छी जिंदगी गुजार चुका हो।
लेकिन लंबी उम्र भी एक नेमत है।
अगर ऐसा है तो मरना भी बहुत से लोगों के लिए नेमत है।
जनाब आप मौत के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं मलकुल मौत आसपास हुआ, हमारी बातें सुनकर कहीं इधर ना आ जाए। अच्छा होगा कोई दूसरी बात करें।
ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपको बहुत प्यारी हो।
बहुत बहुत ज्यादा जनाब। आप जानते हैं कई बरसों के बाद खुदा ने मुझे एक बेटी दी है। मेरी जिंदगी का सब कुछ यही लड़की है। जी चाहता है वो बड़ी हो, यूनिवर्सिटी जाए, वो दुल्हन बने, मैं जल्दी से जल्दी नाना बनूं। मतलब ये कि मेरा मरने का अभी कोई इरादा नहीं है।
ये आपकी बेटी की फोटो है?
जी जनाब।
प्यारी है, बहुत चाहते होंगे ना?
बहुत ज्यादा। हर रोज 2 बार गायब हो जाता हूँ काम छोड़कर उससे मिलने के लिए, और उसकी आवाज भी रिकॉर्ड कर रखी है। जब भी उसकी याद आती है कैसेट लगाकर उसकी आवाज सुन लेता हूँ, सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। आपको उसकी आवाज सुनाऊं?
जरूर, क्यों नहीं। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर छोटी और प्यारी बच्चियां।
आप जानते हैं आज उसका बर्थडे है। दोपहर से अब तक भटकने के बाद उसके लिए एक अच्छा तोहफा मिल पाया है। ये गुड़िया उसके लिए ले पाया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने की होगी?
यकीनन काफी महंगी होगी।
इसको 5,000 में मैंने खरीदा है। ट्रैवल एजेंसी में मेरी ये एक दिन की कमाई है। अपने लिए कुछ भी खरीदने से मेरी जान निकलती है, लेकिन अपनी इस बच्ची के लिए जितना भी खर्च करता हूँ एकदम महसूस नहीं होता।
तुम इस एजेंसी में कब से काम कर रहे हो?
3-4 साल हो रहे होंगे। लेकिन क्यों?
कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना सा है।
पता चलेगा कि आप कमरे की तलाशी ले रहे हैं तो बहुत बुरा लगेगा।
वो इस वक्त है कहाँ?
मुझे बताया है कि किसी दवासाज कंपनी के मैनेजर से मीटिंग है।
मुझे उसकी फिक्र हो रही है बेटी। जानता हूँ वो किस इरादे से ईरान आया है, मगर उसे रोकूं कैसे ये समझ नहीं आ रहा।
आप यकीन रखें वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपकी पोजीशन खराब हो।
मुझे अपनी फिक्र नहीं है बेटी, मुझे खौफ है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। अगर तुम्हें उसके मंसूबे के बारे में कुछ पता है तो बता दो, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है।
उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया।
यही झूठ जो बोल रही हो, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे बता दो कि कुछ करूं।
मुझे कुछ नहीं मालूम है।
और इस फोटो के बारे में क्या बोलो, ये भी नहीं जानती हो? उसके हाथ ये कैसे लगी, कैसे?
उतरेंगे?
मेरा किराया कितना हुआ?
अरे रहने दे, कोई बात नहीं, आप मेरे मेहमान हैं।
किराया कितना हुआ?
4,500।
मनु चहर फराहानी वही है जिसे बाहर रोड की पार्किंग में तुमने अपनी मक्कारी से पुलिस के हवाले कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर होगी।
आपको ये सब बातें कैसे मालूम है?
उस दिन गाड़ी में 3 लोग थे नमक हराम, तुझे याद नहीं? तू, मैं और मेरे अब्बा। हिलना नहीं कमीने गद्दार कहीं के।
रहम करो मुझ पर, रहम करो।
बस इतना बता दे, तूने ऐसा क्यों किया, हमसे गद्दारी क्यों की? मुंह खोल, ऐसा क्यों किया? मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता आखिर मेरे बाप का क्या कसूर था, बोल। पुलिस ने तुझे कितना इनाम दिया, कितने में खुद को बेचा, बोल।
खुदा की कसम कुछ भी नहीं, 4 साल मैंने जेल में गुजारे हैं, उसके बाद रिहाई मिली है।
बोल कितने में खुद को बेचा, आखिर हमसे गद्दारी क्यों की तूने? मुंह खोल कमीने।
कामरान, कामरान ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके ये काम कर दूं तो वो मेरा कर्जा माफ कर देगा, मेरे घर वालों का भी ख्याल रखेगा। मैं भी डर गया था कि कहीं कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे।
कामरान, कमीने, तूने मेरे बाप को कुछ लाख के लिए बेच दिया। कमीने गद्दार, कुछ सिक्कों के लिए बेच दिया तूने।
मेरी बेटी पर रहम करो, रहम करो मेरी बेटी पर।
मैं खुश हूँ कि मेरे बाप की तरह एक और बाप मारा गया। धीरे से
इस फिल्म का नाम क्या है?
अगर तुमने बता दिया तो इनाम दूंगा।
अब मुझे कैसे पता होगा?
ये उन फिल्मों में से है कि जिनमें कातिलों और मुजरिमों को बुरा बताने की बजाय उनकी तरफदारी की जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
अच्छा तो मैं आपके लिए एक अच्छी खूबसूरत सी फिल्म लगाता हूँ, फिर दोनों मिलकर साथ में देखेंगे।
तो फिर जाओ और आतिफा को भी बुला लाओ, क्योंकि अकेले फिल्म देखने में मजा नहीं आता।
वो तो ऊपर पड़ रही है। हाँ ये रही, मिल गई।
इसका नाम क्या है?
अब की बार अगर आपने बता दिया तो मैं इनाम दूंगा। एक नौजवान लड़की और लड़की की कहानी है जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर लड़के का बाप जो बहुत मालदार है उनकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों भी उसकी मर्जी के खिलाफ और इजाजत के बगैर शादी करने का फैसला करते हैं और कहीं दूर जाकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
क्या ऐसी बातें करके तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
नहीं अब्बा, मैं तो फिल्म की कहानी बता रहा था।
अच्छा टीवी बंद करो। मैंने कहा टीवी बंद करो। अब यहां कर मेरे पास बैठो। अच्छा तो बेटे तुम ये बताओ, कहना क्या चाहते हो? किसी की बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मेरी तरफ देखो। अरे बाप रे,
जाग रही हो?
तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम कहाँ थे?
अपने एक पार्टनर के घर। गुड नाइट।
कुरुश, हम डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फोन तो कर सकते थे ना।
सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा।
ये लो, कल से ये सेलफोन अपने साथ ही रखना।
जो हुक्म। गुड नाइट।
क्या हुआ, अब्बा ने डांट पिलाई?
मेरी बात सुनते ही नहीं, बस अपने ही कहे जाते हैं।
उन्हें बताया कि लड़की कौन है, क्या करती है?
उन्हें इससे कुछ मतलब ही नहीं है। कहते हैं प्रॉब्लम मुझ में है। अगर 6 महीने बाद फैसला बदल दिया तो मैं उस लड़की के घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा अब्बा जान, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, फैसला बदलने का सवाल ही नहीं है। मगर वो सुनते कहाँ हैं?
गलती तुम्हारी है, इतनी बार फैसला बदला कि अब्बा को अब तुम पर भरोसा ही नहीं। उम्मीद मियां,
तुम ही बताओ अब मैं उनका एतमाद कैसे बहाल करूं?
तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? चलो बाहर निकलो, मुझे पढ़ना है। चलो,
ऐसे काम नहीं बनेगा, रजा मामू से मिलना ही होगा।
तो वो क्या करेंगे?
वो अब्बा को हमसे ज्यादा समझते हैं, वही उन्हें तैयार कर सकते हैं।
पहले वो मान तो जाएं, पर मानेंगे नहीं। तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने के मामले में उन्होंने सिफारिश की थी और अब्बा अब तक उनसे नाराज हैं। जब भी मिलते हैं कोई ना कोई ताना दे देते हैं।
अगर रजा मामू को मैं यहाँ ना ला पाया तो अपना नाम बदल लूंगा, देख लेना तुम।
उम्मीद, अगर डिनर पर बुलाओगे तो खाना खुद तुम्हें ही बनाना होगा, समझे?
तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली?
खरीदी है।
कब?
परसों।
अच्छा, तो इस उंगली में ना पहनो क्योंकि उस उंगली में ज्यादा अच्छी लगेगी।
हाय, गुड मॉर्निंग।
अरे
हाँ, मजाक कर रहा था।
सुबह खैर, तुम्हारे लिए चाय बना?
नहीं नहीं, दूध ही काफी है, शुक्रिया। और सुनाए जनाब, क्या हाल है आपके? क्या बात है, आज आपका मूड सही नहीं लग रहा।
कल रात किससे मुलाकात की?
ओह, मेरे देर से आने की वजह से नाराज हैं, माफ करें, मुझे आपको बता देना चाहिए था। दरअसल जो आदमी मेरा पार्टनर बनना चाहता है, मैं उसे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उसने मुझे रात को डिनर पर बुलाया। बहुत ही शानदार दावत दी, बहुत अच्छा खाना खिलाया और फिर हमने एक साथ शतरंज खेली जिसमें मैं जीत गया। आप कैसी हैं गुड़िया रानी, आप ठीक हैं? आपके हाथ में ये जो खिलौना है, जानती हो ये किसने खरीदा है? मेरे ख्याल में ये बच्ची बहुत शर्मीली हो गई है।
अजीब बात है, बड़ी जल्दी दूसरों से दोस्ती कर लेती है ये, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे।
छोड़ो इसे, इसे परेशान ना करो।
मेरी बदकिस्मती है, वहां मेरे साथ तो ठीक थी। लगता है यहाँ के लोगों को अखबार का क्राइम पेज कुछ ज्यादा ही पसंद है। मिनी बस में रखी हुई 200 किलो मनशियात बरामद, 7 लड़कियों को कत्ल करने वाला गिरफ्तार। बबड़ा अजीब आदमी था, 7 लड़कियां। आपके ख्याल में इसका क्या करेंगे? यहाँ इसको फांसी ही मिलेगी ना?
हाँ।
अच्छा, अगर एक को मारा होता तो क्या, फिर भी फांसी ही होती ना?
कोई फर्क नहीं करता, कातिल तो कातिल है।
अच्छा, इसका मतलब जिसने 7 खून किए हैं और जिसने 1 खून किया है उसमें कोई फर्क नहीं है। आपके ख्याल में ये इंसाफ है? रुके, मैं दूसरी तरह से आपसे पूछता हूँ। जो किसी फनकार या मिसाल के तौर पर किसी साइंटिस्ट को कत्ल कर दे, उसमें और उस शख्स में जो कि एक नशे के आदि शख्स को कत्ल कर दे, उसमें कोई फर्क नहीं है? क्योंकि कानून की नजर में दोनों का जुर्म कत्ल ही है और उसकी सजा भी एक है, लेकिन क्या दोनों के काम एक है?
बहरहाल सख्त सजा यही है कि उन्हें फांसी दे दी जाए।
बहुत खूब, मैं भी मुआफिक हूँ, लेकिन कैसे, ये जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में चीनी बहुत ही भयानक जुर्म करने वालों को नोकीले किए गए बांसों पर लिटा देते थे और सिर्फ उन्हें इतना खाना पीना दिया जाता था कि वो किसी तरह जिंदा रहें। 1-2 महीने के अंदर वो नोकीले बांस बढ़कर धीरे धीरे उसके बदन के अंदर घुसना शुरू कर देते थे और कुछ दिनों बाद उसके जिस्म के पार हो जाते थे।
इस दौरान वो मुजरिम इतनी अजियत बर्दाश्त कर चुके होते थे कि उनका गुनाह माफ हो जाता था।
बहुत भयानक है, ये तो एक तरह से बर्बरियत है।
हाँ, लेकिन इसी के साथ बहुत मुनसिफाना है, क्योंकि मेरे ख्याल में फौरी मौत कुछ मुजरिमों के लिए कम है।
तुम लोग कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या?
असल में बात यह है कि आपको आखिरत पर ईमान है या नहीं। अगर है तो सारे मसाइल हल हैं।
मेरा भी मानना यही है कि जन्नत और जहन्नम यही है, लेकिन इंसाफ नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो कोई इंसाफ करना चाहता है और अपना हक लेना चाहता है, मजबूर है कि बेरहम हो जाए।
इंसाफ किसकी नजर से?
क्या तुम लोग ये अहमकाना बातें खत्म नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे अलावा यहाँ एक बच्ची भी बैठी है जो तुम्हारी बातें सुन रही है।
माफ कीजिएगा, लेकिन ये सवालात बरसों से मेरे जहन में गूंज रहे हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपनी जहनी परेशानी में हमें भी फंसाओ, समझे? तुम लोगों ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया अपनी इन बातों से।
इन्हें क्या हुआ?
सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
खुदा सलामत रखे।
खुदा आपको भी सलामत रखे।
मैं अर्जुन मंदी साहब का भांजा हूँ, 5 मिनट के लिए अंदर जाना चाहता हूँ।
साइकिल किनारे खड़ी करके पैदल अंदर जा।
शुक्रिया।
मेजर साहब से कह दो कि मैंने एक हफ्ते पहले इस्तीफा लिख दिया है। जब तक मेरी पोजीशन वाजे नहीं हो जाती, मैं कोई नया केस हाथ में नहीं लूंगा।
लेकिन उन्होंने तो हुक्म दिया है कि फाइल को ऊपर ना ले जाऊं।
अगर मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो ओहदा कम कर देना, ये कि मुझे कार चोरों को पकड़ने के लिए भेज दें। ये मेरा काम नहीं है, मैं क्रिमिनल केसेस देखता हूं, ना कि ये।
जानता हूं रजा भाई, लेकिन एक बार ये फाइल तो पढ़ें, शायद आपकी राय बदल जाए। जल्दी फैसला ना करें, जरा सोचें।
सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। लुत्फी साहब नाम के एक आदमी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
अच्छा, अंदर भेज दो।
तशरीफ ले जाए।
शुक्रिया। सलाम वालेकुम मामू, इजाजत है?
वाह वाह उम्मीद साहब, वालेकुम असलाम। रास्ता भूल गए थे?
अब क्या बताऊं, कहते हैं पुलिस व थाने के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है।
सवाल यह है कि खुद चलकर आते हो या पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले आती है यहाँ पर? जरा मारो तो यहाँ।
क्या?
हाँ हाँ मारो, जोर से मारो। तुम्हें बस इतनी ताकत है? मैं कह रहा हूँ जोर से मारो। नहीं, अभी तुम्हें वक्त लगेगा, अभी तुम बच्चे हो, वक्त लगेगा। ओह, जालिम इतना जोर से कहीं मारते हैं क्या?
मेरी क्या गलती है, आप ही तो कहा था जोर से मारो।
अच्छा तो क्या हाल है? तुम्हारे अब्बा कैसे हैं? आतिफा ठीक है?
अब्बा ठीक है और आतिफा भी जी रही है, बस बड़बड़ाती रहती है।
तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी साइकिल का क्या हाल है, और प्रैक्टिस चल रही है नहीं?
2 हफ्ते बाद नेशनल बी टीम का सिलेक्शन है मेरा। अगर पहले से लेकर तीसरी पोजीशन में नहीं आए तो हमेशा के लिए साइकिल रेसिंग छोड़ दूंगा।
बड़ा अच्छा काम करोगे। फिर तुम क्या करोगे?
नहीं मतलब मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
हमने तुम्हारे अब्बा के सामने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है, बेइज्जती ना कर बैठना।
हाँ मगर एक बार और आपको ऐसा करना पड़ेगा।
अच्छा तो ये बात है। मुझे देखो, मुझे तो ये लगा कि बच्चे को मामू की याद आई है।
नहीं, थोड़ी सी आपकी याद भी आई थी।
हाँ हाँ मुझे यकीन है।
मुझे आपकी मदद की जरूरत है मामू जान।
मुझे तो माफी कर दो बेटे, अब मैं तुम्हारी ढाल नहीं बन सकता।
मतलब आप एक नेक काम में शरीक नहीं होना चाहते हैं?
ये नेक काम है क्या?
मैं शादी करना चाहता हूँ।
तुम क्या करना चाहते हो? शादी करना चाहते हो?
अगर आप इजाजत दें तो।
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो एक अकलमंद आदमी थे। हाँ, तुम्हारे अब्बा को भी मालूम है।
मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें, मेरी सिफारिश करें आप।
देखो बेटे, अगर मैं, मेरे बाप और मेरे दादा भी तुम्हारी सिफारिश करें तो ये काम होने वाला नहीं है, यकीन कर लो बेटे।
मरहूम का नाम क्या था?
मनुचहर फराहानी।
और वालिद का नाम?
तैमूर।
तारीख वफात?
सन 68।
सात नंबर ब्लॉक, लाइन 6, कब्र नंबर 27। ये लीजिए।
उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब्बा जान। वादा करता हूं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई भी मुझसे जिंदा नहीं बच पाएगा।